अल्लाह ताला फरमाते हैं, वख़्फ़िद लहुमा जनाहल दुल्ली मिनर रहमा, तुम झुका दो अपने कंधों को, अपने बाजुओं को उनके सामने आजी के साथ रहमत से, शफकत से उनके आगे झुक जाओ। यानी आजी का रवैया, जिस्मानी पोस्चर भी ऐसा हो कि झुके हुए हो, और तुम्हें वैसे भी तुम उनके सामने अपने आप को नीचा रखो। यानी जैसे जैसे अपने आप को, यानी फिजिकली नहीं भी सही, एक फिजिकली भी होता है नीचे करना, अपना आजी करना, लेकिन अपने आप को वैसे भी उनके सामने बिछा दो, यानी उनकी बात को इस तरह तुम्हारे हो कि तुम बिछे हुए हो उनके सामने। जिसको हम बिछे हुए कहते हैं, उसके अंदर जरूरी नहीं कि आप नीचे ही लेट गए, मगर उसका मतलब है कि आपका दिल बिछा हुआ है उनके आगे, जैसे किसी ताकतवर के आगे कोई होता है। इस तरह तुम उनके आगे, जैसे गुलाम होता है ना अपने आका के आगे, कोई ताकतवर आका है उसके आगे कैसे बिछ जाता है, कैसे नीचे अपने आप को कर लेता है, इस तरह तुम अपने आप को नीचे झुका दो उनके आगे। वकुर रब्बिरहमहुमा, और तुम कहो उनके लिए, दुआएं करो उनके लिए। अल्लाह ताला ने सोचें दुआ भी सिखा दी, रब्बिरहमहुमा, अल्लाह ए मेरे रब इन दोनों के ऊपर रहम फरमा, कमा रब्बा यानी सगीरा, जैसे इन दोनों ने मुझे पाला बचपन में, जैसे ये दोनों मेरे साथ थे, इन्होंने मेरे साथ रवैया किया बचपन में। यानी अल्लाह ताला ने इंसान को ले जाके कहां खड़ा कर दिया कि बचपन की यादें उसको दिलाई, तो अपने बचपन को याद करो। अगर आप अपने आज को याद रखोगे ना, जिस वक्त हम जवान हैं, हमारे ताकत है, तो हम कभी भी उनके साथ ये रवैया नहीं कर सकते जो कि यहाँ पे दिया गया। जब तक आप अपने उस टाइम को ना याद करें जिसमें आप बिल्कुल हेल्पलेस थे, आप कुछ करने के काबिल नहीं थे, बिल्कुल बेआसरा थे, अपनी खुराक भी खुद नहीं ले सकते, अपनी गंदगी साफ नहीं कर सकते थे, ऊपर मक्खी भी बैठ जाए तो अपने मुंह से उड़ा नहीं सकते थे, बिल्कुल बेयार और मददगार। उस वक्त माँ ने कितनी मोहब्बत की थी, उस वक्त माँ ने 9 महीने पेट में रखा था, पैदा हुआ था तो 2 साल दूध पिलाया, उंगली पकड़ के चलना सिखाया, तुम खा नहीं सकते थे, माँ तुम्हारे पास बैठ के तुम्हें घंटों लगाती थी खिलाने के लिए, तुम बोल नहीं सकते, तुम्हारे पास बैठ के तुम्हें बोलना सिखाती थी, तुम तोतली आवाज में, दोतली जुबान में बात करते थे, तुम्हें किस तरह वो तुम्हारी बात को समझने की कोशिश करती थी, तुम्हें अच्छे बुरे की तमीज उसने सिखाई, तुम्हें अपने खानदान से मुतारिफ कराया, तुम्हें किस तरह हकूक व फराइज सिखाए, किस तरह तुम्हें स्कूल भेजा, किस तरह तुम्हारी खातिर दुख उठाए। आज तुम जवान हो गए, तुम्हारी सलाहियतें नशो नुमा पा गई, आज वो माँ तुम्हारी तवज्जो की मुस्तहिक है, फिर बाप को देखो, उसने जवानी गला दी तुम्हारी जरूरियात, तुम्हारी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए, सारा सारा दिन लगाया, रातों की नींद कुर्बान की, खुराक तुम्हें मिले, अच्छी तालीम तुम्हें मिले, आज वो बाप तुम्हारी तवज्जो का मुस्तहिक है। देखो तो सही, उन्होंने क्या क्या खिदमतें तुम्हारे लिए अंजाम दी, कोई ऐसी बेलौस खिदमत कर सकता है? तो जिन्होंने अपनी जवानी गला के तुम्हें जवान किया, अब उनका बुढ़ापा तुम्हारे लिए कदरों कीमत वाला होना चाहिए। बुढ़ापा एज सच ही, एज इट इज ही इज्जत का मुस्तहिक है, लेकिन अगर वालदैन बूढ़े हो जाएं, तब तो और भी ज्यादा उनके दिल का ख्याल रखना, दिल ना दुख जाए, क्योंकि इस दिल में तुम्हारे लिए बहुत मोहब्बत है, इस दिल में तुम्हारे लिए बहुत प्यार है। और आज देखें, हम सब अपने आप को देखें, मैं यही कह रही हूँ, आप अपनी औलादों को ना देखेंगे वो जी ऐसे, वो हम अपने आप को देखें, हम सब से कहीं ना कहीं कोताहियां जरूर हुई हैं, हम सब से कहीं ना कहीं उफ क्या बहुत बहुत कलिमात खुद कहे गए हैं, अब हमने क्या करना है उनके लिए, ये दुआ, अगर वो जिंदा है तब भी, अगर वो जिसके माँ बाप दुनिया से जा चुके हैं तब भी, ये दुआ उनके लिए मांगनी है, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बा यानी सगीरा। देखिये अल्लाह ताला ने भी बचपन याद कराया, याद करो वो बचपन, तब तुम्हारे दिल में इनके लिए शफकत आएगी, मोहब्बत आएगी। तो हमने एवरी नमाज में, अब से हमारा इंशाअल्लाह ताला ये तरीका होगा, एवरी नमाज में सलाम फेरने से पहले, इसलिए सलाम फेरने से पहले कह रही हूं ताकि आपको याद रहे, सलाम फेरने से पहले जो हमारी आखिरी दुआ हो वो यही हो, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बा यानी सगीरा, इंशाअल्लाह। कि हम अपने वालदैन का हक तो दे नहीं सकते, उनके सामने कितनी हमने देखें यहां पे तो कहा गया उनके सामने अपने पर बिछा दो, नींद कसारी आजी झुकाओ बिछ जाओ, आवाज भी पस्त रखो। उनके सामने आगे बढ़ के बोलना तो दूर की बात है, ऊंचा बोलना ये बोलना तो दूर की बात है, उफ भी नहीं करना ना, उनसे आगे बढ़ के चलना है ना, उनसे ज्यादा बड़ी अपनी बात को रखना है। और रहमत का लफ्ज देखें, मोहब्बत नहीं है रहमत है, और रहमत बेलॉस होती है, किसी गर्ज के बगैर होती है। तो यानी वालदैन जब बूढ़े हो जाए तो इंसान अब कहता है इनसे क्या मिलना है ना, पहले तो इनकी जरूरत थी, अब मुझे केयर चाहिए थी, अब क्या इनसे मिलना, अब तो ये फालतू चीज है ना। इंसान अपने बच्चों की तरफ देखता है, अब इनको क्या, ये तो एक्स्ट्रा है, नहीं तो ये तुम्हारी रहमत के मुस्तहिक है। देखो कैसे उस रब्बे करीम ने वो वालदेन जब अपना खुद हक नहीं ले सकते, वो उनको वो फरमा दिया उनका हक दिलाने के लिए, खुद रब्बे करीम उनकी वकालत फरमा रहा है। नरमी, रहमत और दुआ, क्या दुआ उस प्यारे रब ने सिखा दी, इन पे रहम फरमा। अल्लाह ये मेरे मोहसिन है, वो हैं जिन्होंने मेरी परवरिश की, मुझे संभालने वाले, इस मुकाम तक पहुंचाने वाले, अल्लाह बचपन में इन्होंने मेरे साथ रहमत की है, शफकत की है, अल्लाह तू इन पे मेहरबान हो जा, इनके बुढ़ापे के मसाइल को, इनकी तलखियों को आसान कर दे। हाफिज इब्ने हाफिज अबू बकर अपनी सनद के साथ रिवायत करते हैं कि उन्होंने हजरत बुरईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, उन्होंने अपने वालिद से ये रिवायत किया है कि एक आदमी तवाफ में था और उसने अपनी वालदा को उठा के तवाफ कराया था, तो उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क्या मैंने अपनी वालदा का हक अदा कर दिया, आपने फरमाया नहीं, एक सांस के बराबर भी नहीं, यानी जितनी एक सांस की कीमत है ना उसके बराबर भी नहीं तुमने अभी अपनी वालदा का हक दिया। तो उनके साथ वालदा के साथ भी रवैया तभी अच्छा होगा जब आप बचपन को सामने रखेंगे, बचपन की मोहब्बतों को, शफकतों को, तब अगर आज को देखेंगे ना तो शायद ना हो सके सही, क्योंकि बुढ़ापा जाहिर है कमजोरी है और उसके अंदर इंसान कई बातें एक करके फिर बार बार रिपीट भी करता है, कई नासमझी की बातें भी होती हैं, तो इस वक्त में गुस्सा आ सकता है, अगर आप अपना बचपन याद करेंगे तो फिर नहीं आएगा। और जाहिर है जब इंसान खुद जवान होता है तो फिर तो वो अपनी जवानी के जोम में इतना होता है, फिर उसको छोटी-छोटी बात पे भी गुस्सा आने लगता है। रब ने फरमा लिया अपना बचपन याद कर लो ना, तुम भी तो एक एक बात कितनी कितनी दफा रिपीट करते थे, जितनी दफा भी करते थे माँ बाप शफकत से ही सुनते थे। अल्लाह अकबर, जब तुम्हारे पास कुव्वत नहीं थी तब उन्होंने तुम्हारा कैसे ख्याल रखा था, आज इनके पास कुव्वत नहीं है, जब तुम्हें अपनी जरूरियात के पूरा करने के लिए उनकी मोहताजी थी, आज इनको मोहताजी है तुम्हारी। इसी तरह आज बहुत सारे वालदेन ऐसे हैं कि जिनको माल की तो नहीं जरूरत होती, उनको वक्त की जरूरत होती है, वक्त दिया जाए उनको, उनके पास बैठा जाए। अब उसमें भी अपने बचपन को याद करें, अगर जब हम बच्चे थे तो वालदेन पैसों की गड्डियां लाके हमारे पास रख देते, हमारे सरहाने रख देते और एक मेड के पास छोड़ देते, तो क्या वो काम हो सकता था ना, उन्होंने भी तो अपनी सारी जरूरियात काटी, अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान किया, अपनी जवानियां घुलाई, पढ़ाया लिखाया, वक्त दिया, तो तब परवान चढ़े हम। आज हम सोचते हैं कि बस इनके लिए मेड रख दें, इनको खाना पीना सब टाइम पे मिल जाए, दवाई टाइम पे मिल जाए, बस ठीक है, अब और हम क्या कर सकते हैं, और इनको क्या चाहिए। एक साहब के बारे में पता चलता है कि वो अपनी वालदा के पास जब जाते तो जाके उनको वो बचपन की नज़में सुनाते, वो छोटी छोटी कहानियां, वो बातें पहले वक्त की, के ताकि उनका दिल बहले उससे, तो यानी किस तरह से उनका दिल बहलाना है, कैसे उनको खुश रखना है, उनका दिल खुश कर देना, ये खुद ही इंसान को सोचना। हर एक के वालदेन के डिफरेंट एक शौक और वो होते हैं, किस तरह से उनको खुश किया जाए, सिर्फ वहां पे वालदेन की यानी नई बात माननी जहां पे वो कोई अल्लाह ताला की नाफरमानी की बात करें। देखिए दो एक्सट्रीम पे लोग चले जाते हैं, एक एक एक्सट्रीम हर कम ही मिलती है, लेकिन है जरूर कि वालदेन कहेंगे कि सूरज अगर मगरिब से तुलू होता तो उन्होंने कहना मगरिब से तुलू होता, चाहे अल्लाह की बात आ जाए रसूल की बात आ जाए वो तोड़ के वालदेन का हुक्म मानना, लेकिन वहां पे नहीं माना जाएगा जहां पे अल्लाह रसूल का हुक्म आ जाएगा। मसलन है कि अल्लाह का हुक्म यह है कि सिला रहमी करो, वालदा कह रही है कि नहीं तुमने फलां अपनी पुप्पी से बात नहीं करनी, तुमने अपने चचा से बात नहीं करनी, बाप के साथ तुमने नहीं रखना अपना, इसने मुझे बड़ा तंग किया है। अक्सर होता है कि डाइवोर्सेस हो जाती हैं, फिर वो वालदा के जाहिर दिल के ऊपर बड़ी या ससुराल वालों ने बड़े जुल्म किए होते हैं और वाकई किए होते हैं, और वो फिर उनके लिए बड़ा वालदा के लिए बड़ा तकलीफ दे होता है। अब वो बच्चों को कहती है कि तुमने भी नहीं मिलना या फलां के साथ नहीं मिलना, फलां उस रिश्ते के साथ, तो उस वक्त क्या है अब मिलना भी है क्योंकि अल्लाह का हुक्म है सिला रहमी और वालदा का भी हुक्म मानना, तो आप क्या करेंगे? ऐसे उनको मिलें कि इनको भी ना पता चले कि इनका यानी उनको दुख हो और उनको तकलीफ हो, उनको भी नहीं तकलीफ देनी, लेकिन साथ साथ वो जो अल्लाह का हुक्म है उसको भी पूरा करना। तो रब्बिरहमहुमा कमा रब्बायानी सगीरा, जैसे उन्होंने बचपन में अपनी पूरी सलाहियतें कुव्वतें लगा के मेरे पर रहम किया, मेरी अपनी एक एक कलकारी को याद करें कि जब खुश होती थी याद करें कि माँ ने कैसे हंसाया। कई दफा हम खुद माएं हम देख रहे हैं बच्चों के साथ हम खुद ही बच्चे बन जाते हैं, बिल्कुल उनको हंसाने के लिए कितनी तरह की बोलियां ऐसे बोल के दिखाते हैं कि वो हंस दे। अब वो बड़ा बच्चा जब हो जाता है तो अब उससे डिमांड है कि अब तुमने कोशिश करनी है कि तुम इनको कैसे खुश करो, कैसे राजी करो, कैसे हंसाओ, जैसे कल माँ कोशिश करती थी। आज माँ कभी कोई कार्टून की वो उसको कॉपी करके वैसी आवाजें निकालेगी, बाप कभी इस तरह की बोली बोलेगा कि ये खुश हो जाए बच्चा। बाप क्योंकि बार दफा बच्चों को ये शिकायत होती है कि इनका क्या करें, इनको हर वक्त गुस्सा ही आता रहता है, तो भाई देखो कि गुस्सा दिलाने वाले काम कौन से हैं, वो मत करो। अगर एक शौहर को पता है कि मेरी बीवी को किस बात पे गुस्सा आता है, बीवी को पता है शौहर को किस बात पे गुस्सा आता है, बच्चे को नहीं पता चल सकता कि माँ बाप को किस बात पे गुस्सा आता है, तो फिर उन नापसंदीदा चीजों को छोड़ दें। अल्लाह ताला फरमाते हैं ये दुआ तुमने अपने वालिदैन के लिए मांगी, ये दुआ इतनी प्यारी दुआ है इसलिए कि बाज दफा हम जो हमने उनके दिल दुखाए होते हैं, जो हमने उनको तंग किया होता है अपनी जवानी में अपनी टीन एज में, उसके बाद अब रिग्रेट्स होते हैं कि हाय अब हम क्या करें, अब किस तरह इसको कॉम्पेंसेट करें। तो उसके अंदर आप ये देखें कि एक हदीस से हम इसमें लेते हैं रहनुमाई कि हजरत मालिक बिन रबिया सादी के साथ बयान फरमाते हैं कि जिस वक्त मैं बैठा हुआ था उस वक्त एक अंसारी आया और कहा या रसूल क्या माँ बाप के फौत होने के बाद भी इनके साथ कोई नेकी करना मेरे जिम्मे है? आपने फरमाया हाँ, चार किस्म की नेकियां, उनकी नमाज जनाजा पढ़ना, उनके लिए इस्तगफार करना, उनके अहद को पूरा करना, उनके साथ इनके दोस्तों की ताजीम करना और उनके रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करना। ये वो नेकियां कि जो मौत के बाद भी काफी, यानी अगर दुनिया में नहीं भी है माँ बाप और आज रिग्रेट हो रहे हैं तो फिर उनके जो दोस्त है बाप उनके जो रिश्तेदार थे, हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा की बीवी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत मोहब्बत करते थे, तो उनकी बहन भी आती थी तो उनको इज्जत देते थे, उनकी सहेलियों के घर कोई बकरी जिबा होती थी तो गोश्त भिजवाते थे, यानी जो जो कोई दूर हो आपसे या फौत हो चुका हो उनके रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक कर लें। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हलाकत की दुआ मांगी थी मिंबर पे जब चढ़ रहे थे, जो तीन दुआएं मांगी थी जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन फरमाई थी, उसमें एक ये भी दुआ थी कि हलाक हो जाए वो आदमी जो अपने माँ बाप दोनों को या एक को बुढ़ापे में पाए और उससे जन्नत नहीं उसने कमाई ना, तो वो आदमी हलाक हो जाए। वो ये दुआ है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इसके बाद तो फिर हम ये सोचें कि ये तो एक मस्ट चीज है, और आज ये है कि बड़े बड़े और नेकी के काम चैरिटी वर्क हो रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है भाग दौड़ फलां, लेकिन ये जिसका हुक्म अल्लाह ने अपनी इबादत के बाद दिया इसके अंदर कोताही है। सबके साथ बातचीत हो रही है, सबका हाल अहवाल हो रहा है, लेकिन जो माँ बाप है उनको पूछा नहीं जा रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि अल्लाह के नजदीक महबूब तरीन अमल कौन सा, तो बताया गया नमाज अपने वक्त पे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाज अपने वक्त पे पढ़ना, फिर पूछा गया कौन सा अमल इसके बाद है, फरमाया माँ बाप के साथ नेकी करना। ये बुखारी और मुस्लिम में रिवायत है, यानी सेकेंड नंबर पे माँ बाप के साथ नेकी करना है। तो माँ बाप के साथ डायरेक्टली भी नहीं गुस्ताखी करनी, और कोई ऐसा काम भी नहीं करना जो गुस्ताखी का सबब बने, और जहां पे किसी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दफा फरमाया, क्या मैं तुम्हें कबीरा गुनाह के मुतल्लिक ना बताऊं, क्या मैं तुम्हें कबीरा गुनाह के मुतल्लिक ना। सहाबा ने फरमाया क्यों नहीं या रसूल, आपने फरमाया अल्लाह का शरीक बनाना ये कबीरा गुनाह, और माँ बाप की नाफरमानी करना ये कबीरा गुनाह। तो उसके बाद आपने झूठ की बात की थी जो 3 दफा की थी, तो उसमें सेकंड कबीरा गुनाह जो है ना वो माँ बाप की नाफरमानी। और ये तो आप सबको पता ना, 3 दफा हुस्ने सलूक के मुस्तहिक का पूछा गया कि मेरे नेक सलूक का मुस्तहिक कौन है, तो 3 दफा फरमाया माँ। और हम सब इसके अंदर अपने कसूरों को देखें कि हमने दोस्तों के साथ भी अच्छा करते हैं, उनके साथ भी अच्छी तरह बोलते हैं, और फ्रेंड्स और सर्कल्स और अपनी उनके साथ, लेकिन जब माँ बाप की बात आती तो फिर वो कहीं ना कहीं डंडी मार देते हैं। यहाँ पे जब अपने पर झुकाने की बात आई तो इसके अंदर ये भी है कि माँ बाप की अच्छी तरह किफालत करो, उनको पर खर्च करो, उनको अलग ना करो, उन्होंने भी तो बचपन में तुम्हारे पर खर्च किया था। और जैसे परिंदा है ना, जैसे परिंदा अपने उड़ने का इरादा करते है अपने परों को फैला लेता है, और जब परवाज खत्म करने का इरादा कर लेता है अपने परों को सुकेड़ लेता है, झुका देता है, इसी तरह बाजू और पर फैलाना, परों को झुकाना, तवाजो का, इनकसारी का, इज्ज का एक इशारा है इसमें। अकड़ अकड़ के ना बात करो माँ बाप के आगे कि कोई वजह से बहुत बड़ी कोई चीज हो और आप क्या चीज है, नहीं। ये जो हम दुआ करते हैं रब्बना गफिरली वली वालिदैया सूरह इब्राहिम में आता है ना, तो उसके अंदर भी हम अपनी मगफरत के, अपने वालदैन की मगफरत की भी दुआ करते हैं, उसको भी समझ के दिल के साथ दुआ करें। अल्लाह ताला हमसे ये हकूक अदा करवाए, क्योंकि इसमें हमारी कोताही हुई है, अल्लाह ताला हमारी कोताहियों को माफ कर दे। जो इंसान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने माँ बाप की तरफ रहमत की नजर से देखेगा, अल्लाह ताला उसको हर नजर के बदले हज मबरूर का अजर अता फरमाएगा, हज मबरूर का। तो सहाबा ने पूछा था क्या कोई बंदा 100 दफा भी दिन में रहमत की नजर से देखे फिर भी, आपने फरमाया हाँ। और ये वही देख सकता ना जिसके पास माँ बाप होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्यामत के दिन 3 इंसानों की तरफ अल्लाह ताला रहमत की नजर से नहीं देखेगा, 3 लोगों की तरफ, और उनमें माँ बाप का नाफरमान, आदि शराबी और एहसान जताने वाला। अरे आपको उस बंदे का भी पता होगा जो नौजवान था और मरने के करीब था, लेकिन उससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए थे ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, वो कह नहीं पा रहा था, उसके मुंह से नहीं निकल रहा था ला इलाहा इल्लल्लाह। तो आपने पूछा कि नमाज पढ़ता है, लोगों ने कहा हाँ, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि इसकी वालदा जिंदा है, तो किसी ने कहा कि हाँ जिंदा तो है लेकिन ये अपनी वालदा की नाफरमानी करता। तो आपने फरमाया वालदा को बुला के लाओ, उससे पूछा ये तुम्हारा बेटा है, उसने कहा हाँ। आपने फरमाया कि अगर मैं आग जलाऊं और इसको उसके अंदर डालूं तो क्या तुम इसको बर्दाश्त कर लोगे, इसको माफ कर दो। उसने कहा कि नहीं मैं नहीं माफ करती। आपने फरमाया मैं आग जलाऊं और इसको उसमें डालूं तो तुम बर्दाश्त करोगी, तो आग जलाओ और इसको उसके अंदर डाल दो। उसने कहा नहीं मैं माफ करती हूँ। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कलमा कहा तो उससे कलमा अदा हुआ था। मैंने इतनी हद तक है कि ये जिंदगी के अंदर भी इंसान के लिए एक वो बन जाता है, सजा बन जाती है ये नाफरमानी। रब्बुकुम आलमु बिमा फी नुफूसिकुम, तुम्हारा रब जानता है ज्यादा जो तुम्हारे दिलों, यानी क्या मतलब, यानी तुम उनकी जो कर रहे हो, जो भी उनकी खिदमत है या तुमने उनको रखा हुआ है तो बेजारी के साथ रखा हुआ है, हाँ मुसीबत है क्या नहीं है, और या किस तरह तुम्हारे दिल में क्या जज्बात है अल्लाह को पता है, या उनसे जायदादें बटोरने के लिए रखा हुआ है कि देखो बूढ़ा मरेगा बूढ़ी मरेगी तो किसी तरह हमें मिलेगा, तो इस वक्त तक इनको अपने पास रखो ताकि ये हो कि हमें ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले, इसलिए रखा हुआ है, या फिर खानदान में वाह वाह के लिए कि जी माँ बाप को इन्होंने ही संभाला था, आखिरी वक्त पे यही थे पास, यही देखो कितने अच्छे हैं ये, इसलिए तुमने रखा हुआ है और इसलिए तुम उनकी केयर कर रहे हो। तो अल्लाह ताला को बेहतर पता है तुम जो तुम्हारे दिलों में, या बाज दफा इंसान उनकी बात को नहीं मानता इसलिए कि वो गलत बात कर रहे होते हैं और वो उसमें उनका नुकसान होता है, तो अल्लाह को बेहतर पता है कि तुम उस इस वक्त उनकी खैर ख्वाही के लिए कर रहे हो। होता है ना बाज दफा कि उनकी वो मसलन कहें कि उनको शुगर है, वो कहते हैं कि नहीं हमें मीठा दो, वो बच्चा नहीं मानता, तो अल्लाह को पता है कि इसके अंदर खैर ख्वाही। इन तकूनु सालेहीन, अगर तुम होगे नेक तो बीना गफूरा, यानी अगर तुम नेकी का इरादा रखते हो, तुम उनका वो बस ना अपना इलाज नहीं कराना चाहते, वो अपनी दवाई नहीं खाना चाहते, आप उनको जबरदस्ती करके उनको बात कर रहे हैं और उनको जबरदस्ती इस चीज के ऊपर कायल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अब अल्लाह को बेहतर पता है आपके दिल के अंदर तो नेकी है ना, आप उनके हक में कोई कमी नहीं कर रहे, वो नासमझी कर रहे हैं, कभी गुस्से में कर रहे हैं, कभी वो किसी और उसमें है, वो नहीं समझ रहे उस बात को, तो अल्लाह तो को पता है कि आपका दिल कैसा है। या बाज दफा वो गलत अकीदे पे होते हैं, आप उनकी नहीं मानते, तो अल्लाह रुजू करने वालों को उनको माफ करने वाला। इसके अंदर ये भी आ सकता है कि कभी इंसान से गलती हो जाती है, ना समझी में बेअदबी भी हो जाती है, कभी वो उफ कर भी देता है, कभी वो कुछ आगे से बात उनको बदजुबानी कर देता है, उसके बाद उसको एहसास होता है, इंसान कमजोर है ना, गलती सबसे हो जाती है। तो फरमाया अभी सलाह कर लो, अब तुम ठीक हो जाओ, अगर तुम वापस रुजू करोगे, वापस आ जाओगे। अवाब क्या है? बार बार रुजू करने वाला। अगर तुम वापस रुजू करने के लिए अल्लाह की तरफ आओगे, माफी मांगोगे, तो अल्लाह ताला भी तुम्हें माफ कर देगा, उसको गफूर पाओगे। और इसके अंदर फिर हम सब के लिए एक रास्ता निकल आता है कि हमने जो भी पिछले जमाने के अंदर की हैं गलतियां, माँ बाप जिंदा हैं तो हम उनसे माफी मांगे, और अगर नहीं है तो हम फिर अल्लाह ताला से माफी मांगे और उनके लिए भी मगफरत की दुआएं करें। वो तो दुआ हर सूरत ही करनी है, मगर जहां पे गलती हो जाए तो जितनी भी दूर निकल जाए। अवाब वो है कि जो यानी रजू कर लेता है, वापस आ जाता है, चाहे जितनी भी दूर चला गया लौट आता है, तो लौट आएंगे वो जो ना समझी में माँ बाप की परवाह नहीं की, या उस वक्त ना कोई खिदमत की, या उस वक्त बड़ी बड़ी बातें कर दी, तो अब अल्लाह ताला इतना मेहरबान है, वो बंदे को इस रिग्रेट में नहीं रहने देता। वो कहता है तुमने अगर नेक बनना चाहते हो ना, तो अगर तुम्हारे अंदर नेकी का इरादा है और तुम समझते हो कि मैंने से गलती हुई है, तो वापस आ जाओ, अपनी गलतियों का अजाला कर लो। जब तुम पलट आओगे ना, तो फिर तुम देखना कि अल्लाह ताला को गफूर पाओगे। आप देखें कि मेरा नहीं ख्याल के कोई भी बच्चे ऐसे होंगे जिनसे कभी भी नहीं कोई गलती हुई, हर एक से कभी ना कभी माँ बाप के हक में कोई कमी, कोई कोताही, कभी कोई हम इंसान है, जल्दबाजी भी है, गुस्सा भी है, अकल भी नहीं थी, तो कहीं ना कहीं गलतियां तो हुई। तो अब हम पलट आए, अब यहां तक वालदैन का चैप्टर तो मुकम्मल हुआ। अल्लाह ताला इन आयात पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुक व नतूबु इलैक। तिलावत सुनते हैं।
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا.